29 अक्टूबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। इंडोनेशिया में एक विमान दुर्घटना, 189 यात्रियों के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं।
उसको पिता सुधर दिरिकन di Depati Amir ini nanti di ruang dalam karantina bagi keluarga yang menjemput।
अयोध्या मुद्दे पर बात करेंगे अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास से।
लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने जनवरी में कर दिया वो भी कोई तारीख नहीं दिया, इससे पता चलता है कि 2019 के पहले अब कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। इंडोनेशिया में आज राजधानी जकार्ता से पंगकल जा रहा लायन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इंडोनेशिया प्रशासन ने कहा है कि जकार्ता के समुद्र के नज़दीक हुए विमान हादसे में किसी भी शख्स के जीवित बचे होने की कम संभावना है। पश्चिमी शहर पंगकल पिनाक की ओर जा रहा बोइंग 737 मैक्स विमान का उड़ान भरने के 13 मिनट के अंदर ही रडार से संपर्क टूट गया। इंडोनेशिया की बचाव टीम ने शवों को ढूंढना शुरू कर दिया है। जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां उन्हें विमान के टुकड़ों के अलावा लोगों के सामान और कुछ शव मिले हैं। लायन एयर के सीईओ ने कहा है कि पिछली उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन उसे ठीक कर लिया गया था। अगस्त से ही इस विमान को इस्तेमाल में लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने कहा कि उचित पीठ अगले साल जनवरी में सुनवाई की तारीख तय करेगी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वह इस साल के अंत में क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स की चेयरवुमेन का पद छोड़ देंगी। वह 18 सालों से इस भूमिका में थीं, लेकिन दिसंबर में होने वाली पार्टी कांग्रेस में वह फिर मनोनीत नहीं होना चाहती हैं। मर्केल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2021 में वह अपने चौथे कार्यकाल के अंत तक चांसलर के पद पर बने रहने को लेकर तैयार हैं। उनकी प्रवक्ता ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि चांसलर का कार्यकाल 2021 तक है और तब तक उनका इस पद पर बने रहने का इरादा है। एंगेला मर्केल बीते 13 सालों से चांसलर के पद पर है। चेयरवुमेन का पद छोड़ने के संबंध में उन्होंने कहा,
Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU.
मैं दिसंबर में हैमबर्ग में होने वाली अगली पार्टी कॉन्फ्रेंस में CDU के नेताओं के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। जर्मनी की चांसलर के तौर पर यह मेरा चौथा कार्यकाल है। 2021 में होने वाले अगले संघीय चुनाव में मैं चांसलर के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ूंगी और ना ही संसद के सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ूंगी। मैं कोई दूसरी राजनीतिक भूमिका नहीं लूंगी। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। श्रीलंका के बर्खास्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने कहा है कि देश में शक्ति का शून्यपन आ गया है। उन्होंने दोबारा संसद शुरू करने की मांग की है। बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा उन्हें हटाए जाने के फैसले को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है और जोर देते हुए कहा है कि उन्हें अभी भी बहुमत हासिल है। विक्रम सिंघे की जगह विवादित पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने जगह ली है। वहीं यह विवाद और गहराता जा रहा है। रविवार को गोलीबारी में एक शख्स की मौत के बाद पद से हटाए गए तेल मंत्री अर्जुन राणातुंगा को गिरफ्तार किया गया है। राणातुंगा को विक्रम सिंघे का नज़दीकी माना जाता है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या मामले में सऊदी जाँच का नेतृत्व कर रहे अभियोक्ता इस्तांबुल में हैं। उन्होंने तुर्की के मुख्य अभियोजक से मुलाकात की है। दौरे के दौरान वह सऊदी दूतावास की जांच भी कर सकते हैं जहां खाशोजी की इस महीने हत्या की गई थी। सऊदी अरब ने खाशोजी की हत्या के लिए सुरक्षा बलों के दुष्ट तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार को विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने संकेत दिए थे कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को तुर्की को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा और सऊदी में ही उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावेशोलू ने कहा, सोची समझी हत्या के लिए जो जिम्मेदार हैं वह सऊदी अरब में गिरफ्तार किए गए थे। वे इसकी जांच भी कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह उपयोगी है कि अभियोजन पक्ष साथ काम करे और जानकारी साझा करे। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। इंडोनेशिया की लॉयन एयरलाइंस का एक यात्री विमान सोमवार को क्रैश होकर समुद्र में गिर गया। विमान में कुल 189 यात्री सवार थे, इनमें से किसी के बचने की संभावना नगण्य है। विमान के पायलट दिल्ली के रहने वाले भव्य सुनेजा हैं। ये विमान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से पंकल जा रहा था। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा विवरण सुनिए सुमरनप्रीत कौर से।
सोमवार को इंडोनेशिया के स्थानीय समय सुबह 6:20 पर विमान JT-610 ने जकार्ता हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उड़ान भरने के 13 मिनट बीतते ही विमान संपर्क से बाहर हो गया। कुछ घंटों बाद ये खबर मिली कि विमान समंदर में क्रैश हो गया है। इस विमान के पायलट भव्य सुनेजा दिल्ली के रहने वाले हैं और वो 2011 में इस एयरलाइन से जुड़े थे। भव्य का परिवार आज रात इंडोनेशिया रवाना होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने कहा कि विमान में 178 वयस्क, एक नवजात और दो बच्चे सवार थे। इसके अलावा दो पायलट और चालक दल के 5 लोग हैं। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी कमेटी के प्रमुख सुर यादव ने बताया कि ब्लैक बॉक्स की खोज की जा रही है।
कि ताकन मम्मके आलत नामन्या पिंकर फाइंडर, यदि से यूएलपी तादी मंगलवार,
हम ब्लैक बॉक्स की खोज के लिए पिंक फाइंडर उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरे उपकरण सोनर स्कैनर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हम गोताखोरों को भी ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए भेजेंगे, जिससे दुर्घटनाग्रस्त विमान का भी पता चल सके।
ये थे सुरियांदो के शब्द। इंडोनेशियाई अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में किसी के बचने की संभावना कम ही है। बचाव दल राहत कार्य में जुट गए हैं। फिलहाल बचाव दलों को यात्रियों का कुछ सामान मिला है, जिसमें बच्चों के जूते और यात्रियों का निजी सामान शामिल है। लायन एयर ने एक बयान में कहा है कि विमान के पायलट और सहायक पायलट काफी अनुभवी थे। विमान में 3 ट्रेनी फ्लाइट अटेंडेंट और एक टेक्नीशियन भी था। बीबीसी को पता चला है कि इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय के 20 कर्मचारी भी विमान में सवार थे। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नुफ्रांसा विरासक्ती ने कहा है कि ये सभी कर्मचारी पंगकाल पिनांग में नौकरी कर रहे थे और जकार्ता में छुट्टी मनाने गए थे। ये विमान पंगकाल पिनांग में देपाती आमिर एयरपोर्ट पर आना था। हादसे की खबर सुनकर विमान में सवार यात्रियों के रिश्तेदारों की एयरपोर्ट पर भीड़ लगने लगी। इस प्रांत के गवर्नर रुस्तम अफेंडी ने यात्रियों के रिश्तेदारों को दिलासा दिया।
मस्को किता सुदा दिरिकान दी देपाती आमिर इनी नंती दिरुवांग दालम करंटीना।
एयरपोर्ट के भीतर एक विशेष कक्ष बनाया गया है। वो परिवार जो यात्रियों को लेने के लिए आए थे, वो इस कमरे में जाकर रुक सकते हैं। आप लोग एक एक करके आइए, हम आपकी मदद के लिए हैं, परिवार यहाँ ठहर सकते हैं।
ये थे रुस्तम एफेंडी के शब्द। इंडोनेशिया में बहुत सारे टापू हैं और यहाँ हवाई यात्रा एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए एक भरोसेमंद जरिया है। लेकिन इंडोनेशिया की एयरलाइंस का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। 2004 में इस एयरलाइन की फ्लाइट ने सोलो सिटी में क्रैश लैंडिंग की थी। इस दुर्घटना में 25 लोग मारे गए थे। साल 2013 में लायन एयर की एक फ्लाइट बाली में समुद्र में उतारी गई थी। विमान में सवार सभी 108 यात्री बच गए थे। लायन एयर ने कहा है कि ये एयरक्राफ्ट इसी साल बनाया गया था और इसने 15 अगस्त से उड़ान भरना शुरू किया था। छोटी दूरी की फ्लाइट के लिए बने इस विमान में अधिकतम 210 यात्री सवार हो सकते थे। ये बोइंग का 737 मैक्स 8 मॉडल था। राहत और बचाव कार्यों में जुटे एक अधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्र को बताया है कि पायलट ने विमान को दोबारा जकार्ता लौटाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन ये विमान अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सका।
इंडोनेशिया में विमान दुर्घटना।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब कुछ खबरें भारत से। छत्तीसगढ़ में अगले महीने की 12 और 20 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धुआंधार सभाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी बैकफुट पर है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 4 दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में थे, जबकि कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के नाम तय करने में ही उलझी हुई है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
आप हरिशंकर नेताम को वोट नहीं देंगे, एक वोट कमल में लगाकर डॉक्टर रमन को आशीर्वाद देंगे, डॉक्टर रमन को सहयोग देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार जब चुनाव की गिनती होगी तो मैं विश्वास लेके यहाँ से जा रहा हूँ कि केस काल विधानसभा में जब समाचार आएगा, एक दिवाली तो दिवाली में मनाएंगे, दूसरी दिवाली जब वोटों की गिनती होगी उस दिन।
पिछले दो दिनों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केवल बस्तर में लगभग दर्जन भर सभाएं और बैठकें पूरी कर ली हैं। वहीं सोमवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ में प्रचार की कमान संभाली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ से लौटे हैं, जबकि उमा भारती और स्मृति ईरानी पहुंचने वाली हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कहना था कि देश भर से भाजपा के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं।
चुनाव में सभी लोग आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और यह जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर के कार्यकर्ता एक परिवार के रूप में काम करते हैं और इसलिए जहां कहीं भी चुनाव होता है तो हम जैसे लोगों को मौका मिलता है।
सभाओं और दूसरे आयोजनों से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी खुश नजर आए।
मैं तीन जगह मेरा कार्यक्रम है और जब जिस प्रकार से रमन सिंह जी ने काम किया है, भाजपा की सरकार ने काम किया है, हमें पूरा विश्वास है जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा।
लेकिन भाजपा के इस धुआंधार प्रचार से अलग कांग्रेस पार्टी में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन इलाकों में उम्मीदवारों को टिकट मिल गई है वो खुद अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हालत ये है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तक तय नहीं कर पाई है। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का दावा है कि जल्दी ही सारे नाम तय हो जाएंगे।
कांग्रेस जल्दबाजी नहीं करना चाहती, जिस जल्दबाजी में 77 नाम घोषित करके भाजपा पता नहीं पछता रही है कि नहीं। हम लोग तो खुश हैं।
सूची तो AICC से जारी होगी, डिस्कशन संभवतः ये फाइनल हो। कुछ और बात अगर पेंडिंग रह जाए जिसके लिए जाना पड़े या फिर बुलाया जाए तो मैं नहीं कह सकता।
चुनाव की राजनीति को जानने वाले इस बात को बेहतर समझते हैं कि एक एक दिन की देरी किसी उम्मीदवार या विधानसभा की सीट के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। जाहिर है अभी तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी नुकसान में नजर आ रही है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब रुख मध्य प्रदेश का, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के मालवा क्षेत्र पहुंचे हैं। उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और फिर चुनावी यात्रा शुरू कर दी। राहुल गांधी ने राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों पर निशाना साधा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि वो क्या शशि थरूर को पार्टी से निष्कासित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी से शशि थरूर के बयान पर माफी मांगने को भी कहा। पेश है शूरे नियाजी की रिपोर्ट भोपाल से।
मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में दो दिवसीय चुनाव प्रचार की शुरुआत राहुल गांधी ने सबसे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजा से की। इसके बाद राहुल गांधी ने शहर के दशहरा मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दोनों को निशाने पर लिया।
लाखों रुपए मेहुल भाई ने ICICI के बैंक अकाउंट अरुण जेटली के बेटे के बैंक अकाउंट में डाला। फाइनेंस मिनिस्टर के बेटी को मेहुल चौकसी पैसा देता है, 35,000 करोड़ रुपए ले जाता है। नरेंद्र मोदी उसे मेहुल भाई कहते हैं। फर्क क्या है? ये लोग नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, विजय माल्या को भाई कहते हैं। हम वो जो महिला है जिसको जेल में डाला है उसे हम बहन कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें गरीब महिला के घर में गलत बिल आता है, उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं दे पाती, झूठा बिल आता है और उसे मध्य प्रदेश की सरकार अंदर कर देती है? ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं।
वहीं राहुल गांधी ने प्रदेश में 15 सालों से काबिज भाजपा सरकार पर भी हमले किए। उन्होंने उज्जैन में हुए कुंभ मेले में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और व्यापम की बात भी की।
महाकुंभ मेले को भी नहीं छोड़ा, 10 गुना ज्यादा पैसा रेट इन्फ्लेट करके महाकुंभ का पैसा उठा के ले गए। व्यापम स्कैम में 50 लोगों की हत्या हुई। शिक्षा का पूरा ढांचा खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार नहीं देते हैं। पकौड़े तलोगे तब भी BJP आपसे पैसा चोरी कर लेगा, तेल का भी पैसा ले जाएगा, नोटबंदी से पैसा ले जाएगा और पकौड़े का भी एक पीस उठा के ले जाएंगे। ये है इनकी सच्चाई। धर्म की बात करते हैं मगर इनका धर्म भ्रष्टाचार है।
वहीं भाजपा भी राहुल गांधी की इस यात्रा पर नजर रख रही है। पार्टी ने शशि थरूर की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि यह पूरे हिंदुओं का अपमान है और इसे सहा नहीं जाएगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पत्रकारों से कहा,
राहुल जी आज आप महाकाल की पूजा अर्चना अभिषेक करने जा रहे हैं, मगर आज भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश का प्रत्येक जनता यह डिमांड करती है, यह आपसे मांग रखती है कि आप क्षमा याचना करें। कौन से मुंह से आप महाकाल की पूजा करने जा रहे हैं? आपके नेता शिवजी के खिलाफ इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और आप यहाँ महाकाल की तरफ पूछ करने की बात करते हैं। उसमें अगर शशि थरूर जी जो कि राहुल गांधी के खास, उनका ये कहना कि शिवलिंग पर चप्पल मारने वाली बात, आप बताइए क्या ये इंदौर, अहिल्याबाई और मध्य प्रदेश की जनता और समस्त जगत के हिंदुओं के लिए अपमान का विषय है या नहीं?
प्रदेश का मालवा इलाका काफी महत्वपूर्ण समझा जाता है। मालवा में कुल 50 सीटें हैं, इनमें से भाजपा के पास 45 सीटें हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीटें हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी क्षेत्र को 2 दिन दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी इंदौर में एक रोड शो भी करने जा रहे हैं। इंदौर भाजपा का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस को इस बार इस क्षेत्र में काफी उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी टिकटों का ऐलान नहीं किया है, इसलिए राहुल गांधी के शो में पार्टी का हर नेता अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट विवाद में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब इस मामले में अगले साल जनवरी तक नई तारीखों का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच को आज से इस मामले की सुनवाई करनी थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुनवाई होनी थी जिसमें उसने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का कहना है कि लोग सरकार से नाउम्मीद पहले ही थे, अब कोर्ट ने भी उन्हें निराश कर दिया। सत्येंद्र दास से अयोध्या में बात की हमारे साथी समीर आत्मन मिश्र ने और सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया जानी।
आशा बहुत रही कि अब की बार जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी वो बराबर निरंतर चलेगी और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा, ऐसा आशा थी। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने जनवरी में कर दिया, वो भी कोई तारीख नहीं दिया, इससे पता चलता है कि 2019 के पहले अब कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं दे। सरकार तो इसे टाल मटोल कर रही और 3.5 साल बीत गया, अब आएगा चुनाव आएगा, लेकिन कोर्ट से आशा रही होगी।
लेकिन सरकार से जो ये उम्मीद लोग लगाए हुए हैं कि वो इसमें कुछ पहल करे या वो कुछ कर सकती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट से हट करके पहल करे तो कुछ इस दिशा में काम हो सकता है?
दिल्ली में संतों ने बैठ करके कहा कि आप अध्यादेश लाइए, राष्ट्रपति से मिले, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में मोहन भागवत जी ने भी कहा कि अध्यादेश ला करके और राम मंदिर से जो समस्याएं समाधान करें, वो नहीं हुआ। अब उनके नेता जो है अमित शाह जी आदि, वो बोल रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के खिलाफ आदेश पारित किया तब जैसे आह्वानों को हुआ था उसी प्रकार से हम इसको लोकसभा में अध्यादेश ला करके और इसको निर्धारण करें, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि कोर्ट का कोई निर्णय आएगा ही नहीं। जब कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तो सरकार भी कुछ नहीं करेगी।
अच्छा, ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था अगर उसी को बरकरार रखता है, अगर रखता है, तो क्या उस स्थिति में ये जो पक्षकार हैं दोनों तरफ के, वो लोग इसको मानेंगे?
देखिए, मानने इसलिए नहीं है कि पंचित का जो जगह है 3 पक्ष में, तो एक विवाद तो बहुत दिनों से चल रहा है, यदि बगल में मस्जिद भी बन जाती है तो यह विवाद आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसे कहा गया कि उनसे हट करके वो जमीन जो है वो तो आपको छोड़ दिया सकते हैं, हाई कोर्ट ने दिया ही नहीं, तो जब वो जमीन छूट रही है तो आप कहीं पर मस्जिद बना लीजिए, बगल में बनाने से या कुछ उस क्षेत्र में बनाने से कौन सा दुख है। आपका जिद रहा कि जहाँ पर हमारा विवादित ढांचा रहा, तथाकथित मस्जिद रही, उसी पर हम वही जमीन लेंगे, रामलला को हटाया जाए किया ये रहा तो हाईकोर्ट ने छोड़ दिया, वो वहाँ तो विराजमान रामलला को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया, तो अलग होकर के आप कहीं दूसरे जगह मस्जिद चाहते हैं तो सरकार सहयोग करेगी, यहाँ के संत सहयोग करेंगे, जमीन देंगे, बनवाइए, लेकिन उस पर भी लोग तैयार नहीं है, इसलिए विवाद का विवाद ही रहेगा।
इन सारी चीजों के अलावा हालांकि बहुत सी कोशिशें हुई हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिसमें इसके पक्षकार ही आपस में मिल करके और वो कोई रास्ता तय कर लें जिसको कहा भी जाता है कि आपसी सहयोग से तय हो सकता है, तो क्या कोई गुंजाइश इसकी बनती दिख रही है?
जब बात उनसे संबंधित है, जैसे इकबाल हैं, उसके बाद में हाजी महबूब हैं, उसके बाद में और लोग हैं, तो जब वो कहते हैं वहाँ की एक जमीन हम नहीं छोड़ेंगे, तब जब एक जमीन एक इंच भी नहीं छोड़ना है उस पर, वहाँ हमारे रामलला विराजमान, और कोर्ट ने कह दिया और राम जन्मभूमि है रामलला की, तमाम साक्ष्य मिले हैं कि मंदिर तोड़ करके मंदिर बनाएंगे, तो सब कुछ होने के बाद भी उनकी एक जीत और जीत के कारण से न आपसी समझौता हो पाया और न ही कोर्ट भी कोई निर्णय कर पाया।
राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का।
नमस्कार, आपकी राय के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा और मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी, क्या कह रहे हैं आज हमारे पाठक और श्रोता?
आज मुकेश जी, दो ही पोस्ट कार्ड हमारे पास आए हैं और बाकी सारे मेल आए हैं हमारे पास, और जो पहला पोस्ट कार्ड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कमलेश कुमार सक्सेना का, जो लिखते हैं उत्तराखंड से। और ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व फौजी शासक यहया खान पर रेहान फजल की विवेचना बेहद पसंद आई उन्हें।
जी, रेहान साहब ने काफ़ी विस्तार से उनके बारे में बताया है और कमलेश जी को अच्छी लगी ये विवेचना। सामान्य तौर पर लोग रेहान जी की जो एक काफ़ी जो समय लगा करके और रिसर्च करके शोध करके जो रिपोर्ट करते हैं वो वेबसाइट पर और रेडियो पर दोनों जगह लोगों को बहुत पसंद आती है, तो ये रेहान जी तक सुन ही रहे हैं रेहान जी तो बिल्कुल अच्छी बात है जी।
ये अगला पोस्ट कार्ड भेजा है असद अली ने, रामपुर से उत्तर प्रदेश, और ये लिखते हैं कि महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आप सीरिया देश पर दुनिया जहां कार्यक्रम श्रोताओं को सुनाने की कृपा करें।
इसके बारे में तो ये है कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय चर्चा में रहते हैं असद जी, उसकी चर्चा होती रहती है, और सीरिया के ऊपर कार्यक्रम पहले हुआ है और उसके ऊपर तो हम लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं वहाँ की परिस्थितियों को लेकर के, और दुनिया जहान भी समय समय पर होता रहा है और होगा, जिस तरह की खबरें होती हैं उस पर वो फोकस रखते हैं, तो ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा।
अब ईमेल की तरफ रुख करें तो यहाँ पर सबसे पहला ईमेल है गौतम दत्ता का, जो ये लिखते हैं कि गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट सुनी, जो मिजोरम के एक सैनिक स्कूल छिनचिप में पहली बार 6 लड़कियों को दाखिला मिलने पर थी और वो बहुत ही अच्छी लगी उन्हें, और साथ ही साथ बीबीसी पर ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बोलसोनारो के बारे में सुना, अच्छा लगा।
चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि रिपोर्टें हमारी पसंद आई और इसी तरह अपना फीडबैक अपनी प्रतिक्रिया देते रहें।
अगला ईमेल भेजा है गिरीश बी द्विवेदी जी ने, जो ये लिखते हैं कि मैं अपने पिताश्री के द्वारा जो है बीबीसी का लिसनर बना और तब से अब तक बीबीसी का श्रोता रहा हूँ, लेकिन एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि बीबीसी हिंदी पर 90 के दशक के जो ऑडियो हैं वो क्या दोबारा सुनाए जा सकते हैं?
हाँ, इस तरह का आर्काइव समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं, कोई नियम के हिसाब से तो नहीं कर पाए हैं ये किसी की नियमतः प्रस्तुत हो या साप्ताहिक रूप से, पर जैसे जैसे खबरें होती हैं और उस समय के वीडियो या ऑडियो हमारे पास जो उपलब्ध हैं वो ऑडियो हम अपने श्रोताओं तक और अपने जो bbchindi.com यानी हमारे जो डिजिटल के रीडर्स हैं उन तक भी पहुँचाते रहे हैं, और वो एक ज़रिया है जिससे उन्हें ये मिलता रहेगा।
अगला ईमेल मुकेश जी जो भेजा है ना, पहले तो ये शिकायत है आपसे कि आपने अपना नाम नहीं लिखा है, सिर्फ ईमेल आईडी है beallwayshappy63@gmail.com।
चलिए, बी ऑलवेज हैप्पी एक अच्छा संदेश जरूर उन्होंने दिया है इस ईमेल आईडी के जरिए कि हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ,
पर उन्होंने हमसे शिकायत की है।
ओके।
और वो ये शिकायत की है कि आप सिर्फ क्रिकेट का ही न्यूज क्यों देते हैं, क्या इंडिया में कोई और गेम नहीं है? इंडियन प्लेयर्स के बारे में, कुछ और जो प्लेयर्स है उनके बारे में आप क्यों नहीं लिखते?
इसका जवाब आप ही दीजिए, क्योंकि आप अक्सर स्पोर्ट्स की खबरें देती हैं, क्या ऐसा होता है कि सिर्फ क्रिकेट की खबरें ही ली जाती हैं?
मुकेश जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं प्रसारित करती हूँ तो उसके अंदर हॉकी भी रहता है, फुटबॉल भी रहता है, जबकि अभी एशियन चैंपियनशिप जो है हॉकी में खत्म हुई है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक टाई हो गया क्योंकि मुकाबला हो नहीं पाया मौसम के कारण,
ड्रॉ हो गया।
हाँ, तो ये खबरें हम जरूर देते हैं। आपको लगता है गलत फहमी हुई है या आप कम सुनते हैं बीबीसी हिंदी के स्पोर्ट्स को, जरा ज्यादा सुनिए तो आपको फर्क पता चलेगा।
मतलब यह है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि क्रिकेट पर ही फोकस रहे, हम खुद भी ये ध्यान रखते हैं समय समय पर वैसी खबरें। आपको याद ही होगा कैसे रेहान जी ने पूरा राष्ट्रमंडल खेल जो है वो वहां से ऑस्ट्रेलिया से जा करके कवर किया था, तो हमारी कोशिश रहती है और वो बरकरार रहेगी, नियमतः रहेगी, ये विश्वास रखिए।
अगला ईमेल लिखते हैं मनोज निम, और ये कहना चाहते हैं कि आपके जो कार्यक्रम हैं और जो आप न्यूज़ देते हैं वो बहुत ही ईमानदारी और सही काम के लिए आप लिखते हैं, और आपकी पत्रकारिता को देखते हुए ये लगता है कि पत्रकारिता वाकई में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
ये बहुत ही उत्साहजनक बातें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जनता के लिए जो ज़रूरी खबरें हैं, हमारे पाठकों और श्रोताओं के लिए या दर्शकों के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, जो ज़रूरी खबर हैं, उन तक हम पहुँचें, उनकी चर्चा करें और वो वस्तु स्थिति लोगों तक पहुँचाएं। इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट की अक्सर चर्चा सुनते हैं, वहाँ जा करके क्या देखा सुना वो बताया जाए। और अच्छा लगा ये देख करके कि उन्हें हमारा जो ये प्रयत्न है ये पसंद आ रहा है। इसी के साथ आपकी राय का समय अब समाप्त हो रहा है। जाने से पहले अपना पता बता देते हैं। आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है
hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आज मुंबई के ब्रेबर्न स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच चौथा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 377 रन का स्कोर खड़ा किया है। इस समय वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग कर रही है। हमारी साथी सूर्यांशी पांडे इस मैच पर नज़र रखे हुए हैं, स्टूडियो में बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए। बताइए क्या है ताज़ा स्थिति
रेहान जी? आज सबसे पहले ये मुकाबला जो है मुंबई में हो रहा है, और इस मुकाबले में अभी जो है 26वां ओवर चल रहा है और कुलदीप यादव जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं और 117 रन बनाए हैं वेस्टइंडीज़ की टीम ने और 8 विकेट का नुकसान है इनको। और अगर हम बात करें पूरे मैच की, तो शुरुआत में मैच का टॉस जब हुआ तो टॉस जीता भारत ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और जो लक्ष्य दिया है रेहान जी वो बेहद मुश्किल है वेस्टइंडीज़ के लिए। 378 रन जो है उन्होंने दिए हैं, और ये लक्ष्य भेद पाना मेरे लिए, मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।
थोड़ी बात करें भारत की बैटिंग की, रोहित शर्मा फिर बहुत लय में दिखाई दिए और अंबाटी रायडू ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। कुछ बताएं किस तरह की बल्लेबाजी रही भारत की?
एक तो ये बात कहनी पड़ेगी कि अंबाटी रायडू ने जब वापसी की है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है करते आए हैं वेस्टइंडीज़ के खिलाफ, और रोहित शर्मा का तो क्या कहना, मुझे लगता है फ्लैट पिच के वो बादशाह बन चुके हैं, और उन्होंने 21वां शतक जो है वो अपना पूरा किया और 162 रन उन्होंने बनाए थे, और सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने 13 चौके और 1 छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया, और फिर बस ये कि 200 रन बनाने से वो चूक गए, जो मुझे लगता है कि अगर बना लेते तो एक और रिकॉर्ड उनके नाम जो है जरूर लग जाता, लेकिन एशले नर्स की बॉल पर वो आउट हो गए। पर यहाँ पर रेहान जी एक और खिलाड़ी की बात करनी पड़ेगी जो गेंदबाजी में काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन कर रहा है, वह है के खलील अहमद। इन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं अभी आज के मुकाबले में, और राजस्थान का एक खिलाड़ी है और बेहद अच्छा उमदा प्रदर्शन उन्होंने किया है। 2016 में वो पहली बार आईपीएल के लिए भी खेले थे दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, और हाल ही में जो आईपीएल 11वां जो संस्करण था उसके अंदर उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला था और राजस्थान की टीम के लिए खेलते आए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में खेला, देवधर ट्रॉफी में खेला, और आज भारत के लिए वो खेल रहे हैं। इन्होंने अपना डेब्यू किया था हांगकांग के खिलाफ और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनका इस मुकाबले में देखा जा रहा है, और अभी पॉल और जेसन होल्डर जो हैं वो वेस्टइंडीज़ के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं।
तो एक तरह से भारत की जीत करीब करीब पक्की हो चुकी, क्योंकि 8 विकेट उनके गिर चुके हैं और अभी बहुत रन बनाने बाकी हैं, नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल दिखाई देता है। सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
इंडोनेशिया में आज राजधानी जकार्ता से पंगकल जा रहा लॉयन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इंडोनेशिया प्रशासन ने कहा है कि जकार्ता के समुद्र के नज़दीक हुए विमान हादसे में किसी भी शख्स के जीवित बचे होने की कम ही संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वह इस साल के अंत में क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स की चेयरवुमेन का पद छोड़ देंगी। वह 18 सालों से इस भूमिका में थीं।
श्रीलंका के बर्खास्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि देश में शक्ति का शून्यपन आ गया है। उन्होंने दोबारा संसद शुरू करने की मांग की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।